તારીખ 10/7/1992 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા ભાવનગરમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 1.
થોડી તૈયારી તો કરો. દેવચંદ મેં પ્રશ્નો ઓછા થઈ ગયા છે, પહેલા બહુ હતા, બહુ હતા એટલે જરૂરત થી વધારે હતા. પણ આ વખતે ભાવનગર આવ્યા ત્યારે અનુભવ થયો કે બહુ ઓછા પ્રશ્નો થઈ ગયા છે, ભાગ્ય જ પૂછે છે. જિજ્ઞાસા હોય તો પૂછવા જોઈએ, ને બધું સમજાઈ ગયું હોય તો જુદી વાત છે. પ્રશ્ન એ છે, લાગે પ્રશ્ન પૂછના ઠીક હૈ, અપને જિજ્ઞાસા હો તો પૂછના ચાહીએ. અગર હમકો સબ સમજ મેં આ ગયા હૈ તો હમ નહીં પૂછેંગે. રાત્રિ ચર્ચા મેં એક દિન એક દફા એસા થા કે ગુરુદેવ કરે ચર્ચા મેં ડેલી રાત્રિ ચર્ચા રાત કો હમેશા ચલે તો ફિર વહાં હમેશ કો સુનને વાલે કો તો ફિર કોઈ ઇતની જિજ્ઞાસા ભી નહીં હોવે તો પ્રશ્ન નહીં ચલતા થા. તો ગુરુદેવ બોલા કે હમકો એસા લગતા હૈ કે સબકો સબ સમજ મેં આ ગઈ હૈ બાત. આશંકા તો હોવી જોઈએ, હોવી જોઈએ. પૂર્ણ શુદ્ધિ ની પર્યાય वो तो एक सीधी बात ही है. अब प्रश्न ये है कि द्रव्य क्यों नहीं लेना और पर्याय क्यों लेना, ये प्रश्न होना चाहिए. ठीक. तो जिस द्रव्य को जाना नहीं पहचाना नहीं उसके लिए तो भाव आएगी. જબ હમારે ઘર મેં હીરા પડા હૈ હમકો પતા નહીં હૈ કે સચ્ચા હીરા હૈ તો હમ તો લડકે કો ખેલને કે લિયે ખિલોના કે તરહ દે દેંગે. અગર હમે પહેચાનેંગે કે યે હીરા હૈ તો હમ તિજોરી મેં રખ દેંગે, ખિલોના થોડા બનાયેંગે. તો દ્રવ્ય કા તો પતા નહીં હૈ, જાનતે નહીં. ઓર હમકો દુઃખ હૈ वो हमें नहीं चाहिए, हमारे में जो दोष है वो भी हमें नहीं चाहिए. तो थोड़ा भी दोष नहीं चाहिए हमें, यही अस्ति से पूर्ण निर्दोषता है. इसलिए हमें उसकी चाह ना रहती. हाँ, नास्ति पूर्वक अस्ति को तो समझ सकते हैं कि दुख नहीं चाहिए, दोष नहीं चाहिए. तो इस तरह जो है, पहले कोई भी जीव प्रवेश करता है धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो किस भावना से करता है, कि हमारे में जो अवगुण है, हमारी जो वर्तमान स्थिति है वो ठीक नहीं है, उसमें सुधार लाना है. तो मोक्ष मैंने परिपूर्ण सुधार लाना है, थोड़ा लाना है या अधूरा लाना है, सुख थोड़ा चाहिए या पूरा चाहिए, तो पूरा चाहिए. इसलिए यहां से शुरुआत होती है. इसलिए यहां द्रव्य का सवाल नहीं रहता. गुरुदेव को भी ये प्रश्न पूछा गया है. और ज्ञान अग्नि, ज्ञान अग्नि नहीं, वो चर्चा है ना जो जयपुर से निकली है, ज्ञान गोष्ठी में. जो उसमें वो बात आई है, उसमें वो प्रश्न पूछा गया है, गुरुदेव ने उत्तर भी दिया है। तो हमको तो पता नहीं था, लेकिन हमारे एक जो मुमुक्षु मित्र है उसने हमारे साथ चर्चा किया कि पूर्णता के लक्ष्य सर्वत में द्रव्य लेना के पर्याय लेना। हमने कहा कि यहाँ तो पर्याय की बात है, कहने का आशय तो पर्याय ही निकलता है। तो उनको मंजूर नहीं हुआ, सम्मत नहीं हुआ, वो गुरुदेव के पास पहुंचे। तो गुरुदेव कहे तो माने हम। गुरुदेव को पूछा तो पूर्ण पर्याय की बात है, तो फिर वो आया घूम के हमारे पास। तो वो बात सही है आपकी, गुरुदेव को पूछा था, गुरुदेव ने ऐसा ही बताया। तो गुरुदेव ने कहा इसलिए माना, क्या क्या हुआ? प्रश्न ये होना चाहिए कि ऐसा क्यों? गुरुदेव को भी दोबारा प्रश्न करना चाहिए, मतलब आप कहते हैं मानते हैं लेकिन ऐसा क्यों? इसलिए नहीं मानना चाहिए। स्वतंत्र विचारधारा, स्वतंत्र विचार शक्ति मुमुक्षु में होनी चाहिए। यहाँ 234 नंबर का प्रश्न चला है, पूर्णता ना लक्ष्य शुरुआत ते शुरुआत एम श्रीमद राजचंद्र जी कहूं छे। श्रीमद राजचंद्र जी ने नहीं कहू, तो प्रश्न पूछवा वाले पूछे, गुरुदेव आ सूत्र आए पूछे। श्रीमद जी तो दृढ़ मोक्षेच्छा ये शब्द वायद्रो से 254 में दृढ़ मोक्षेच्छा, त्या पूर्णता ना लक्ष्य शुरुआत में त्रिकाणी द्रव्य लेवू के केवल ज्ञान पर्याय, कृपा करीने स्पष्टीकरण करशो। એટલે પૂછવા વાળાની એવી ધારણા છે કે આ શ્રીમદજીનું કહેવું છે, ખરેખર સૂત્ર ગુરુદેવે આપ્યું છે અને એ આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર કે જો પ્રવચન હૈ ઉસ પ્રવચનો મેં બાર બાર વો બાત આતી હૈ, 80 ગાથા છે ગુરુદેવ કે પ્રવચનો મેં, ગુરુદેવ કે શ્રીમુખ સે વાત નીકળી હૈ બાર બાર। પણ વો પ્રવચન હુઆ હૈ 1996 48 વર્ષ હુઆ, મને 52 વર્ષ સાલ હો ગયા, 52 साल पहले के प्रवचन है राजकोट के, हैं? नहीं, 91 से परिवर्तन हुआ था, 5 साल हुई थी। तो अपने जो स्वाध्याय मंदिर की जो दीवार है दक्षिण दिशा के गुरुदेव के कमरे वाली, वहां वो लिखा है पूर्णता के लक्ष्य शुरुआत वही वास्तविक शुरुआत है, और नीचे नाम दिया है पूज्य गुरुदेव श्री, श्रीमद जी का नाम नहीं दिया है, गुरुदेव का नाम लिखा है। पूछने वाले को ये कोई ख्याल ऐसा रहा है कि वो श्रीमद जी का वचन है, लेकिन है गुरुदेव का वचन है। उत्तर यही, पूर्णता ना लक्ष्य में साध्य रूप केवल ज्ञान पर्याय लेवी, साध्य रूप अही एटले आ सूत्र छे, त्या आ सूत्र में जे बात करी छे पूर्णता ना लक्ष्य के શ્રીમદ રાજચંદ્રજી આ પૂર્ણતાના લક્ષ્ય શરૂઆત એ જ વાસ્તવિક શરૂઆત એ ગુરુદેવનું વચન છે, શ્રીમદજીનું નથી। પૂછવાવાળાને એવો ખ્યાલ છે તે શ્રીમદના નામથી પૂછ્યું છે, એકચ્યુઅલી એ ગુરુદેવશ્રીનું વચનામૃત છે, અને આપણે દિવાલમાં પણ ગુરુદેવશ્રીનું નામ જ લખ્યું છે કે આ વચન નીચે ગુરુદેવશ્રીનું નામ લખ્યું છે વચનને નીચે। અહીં એટલે શું કે આ અહીંયા चर्चा किया है कि जिस मुमुक्षु जीव को पूर्ण साध्य निर्दोष अवस्था केवल ज्ञान पर्याय मोक्ष अवस्था उसका लक्ष्य से शुरुआत होती है, उसका ध्येय से शुरुआत होती है कि ये मेरा साध्य है, ये मेरा आदर्श है, तो उसको फिर एक ऐसी भीतर में खोज चलती है कि मेरा स्वरूप कैसा है, कि जिसके आश्रय से सहज ऐसी दशा प्रकट हो उसको सही खोज चलती है, और जिसको सही खोज चलती है उसको द्रव्य का पहले निर्णय होता है या पहचान होती है, और फिर अनुभव में वो आने का सन्मुख का पुरुषार्थ चलता है, तो सम्यक सन्मुखता आती है वहां से। लेकिन जिसको पूर्णता के लक्ष्य शुरुआत ही नहीं हुई उसको तो द्रव्य से तो अनजान है, वो द्रव्य का लक्ष्य कैसे करेगा, जिससे वो अनजान है उसका लक्ष्य कैसे करेगा। और यहां तो जानकारी इस तरह से लेते हैं कि हमें दुख नहीं चाहिए, हमें दोष नहीं चाहिए, परिपूर्ण रूप से नहीं चाहिए, तो ये नास्ति में अस्ति आ गई ऐसे। तो ये बात हमने एक दूसरे मुमुक्षु ने बताई थी 6-7 साल पहले, क्योंकि ये चर्चा तो हर जगह चलती है। उसका आप ठीक कहते हैं, गुरुदेव ने भी ऐसा कहा है, तो हम तो जानते हैं। हमारे एक मुमुक्षु भाई ने चर्चा कर ली थी हमारे साथ, चर्चा करने के बाद गुरुदेव की उपस्थिति में वो पूछ के आए थे हमारे पास, इसलिए हमें पता है कि गुरुदेव क्या कहते हैं, अपने वचन का अर्थ क्या करते हैं। ज्ञान गोष्ठी में, तो ये जो ज्ञान गोष्ठी है उसने दिखाया था हमको, ये बराबर है, ये ठीक है। नींव डालने के लिए, हाँ, सत्संग तो मुमुक्षु की भूमिका को लेकर के मुनिपद तक सत्संग में रहने के लिए श्री गुरु का उपदेश है, आज्ञा है। इसका क्या कारण है, क्यों के मुमुक्षु से लेकर छठा गुण स्थान तक उपयोग बाहर जाता है कि नहीं जाता है, जाता है। तो चतुर्थ गुण स्थान से उपयोग आत्मा में जाता है, शुरुआत होती है, लेकिन कितना काल उसका, क्षण मात्र है वो, तो फिर तो उपयोग बाहर जाएगा। उपयोग बाहर जाएगा तो बाहर में किसका, किसी के न किसी का संग होगा उसको, तो उस संग में विवेक करना है। जब अनिवार्य रूप से जीव का उपयोग बाहर जाता ही है, भीतर में नहीं रहता है, तो उसको विवेक करना है कि हमें किसका संग करना। तो बाहर में जो भी, भीतर में आने के लिए अनुकूल है इसका संग करना, क्योंकि हमारी भावना अंतर में रहने की है। हमारी भावना क्या है कि स्वरूप में लीन रहना है, तो इसके लिए कौन कौन से निमित्त अनुकूल है, उस निमित्त का संग में करना है। दूसरा, दूसरे को असत्संग कहते हैं, सत्संग, असत्संग और कुसंग, ऐसे तीन संग का भेद है। तो कुसंग किसको कहते हैं, कि अवगुणी जो जीव है उसके प्रति भी प्रीति रखना, अपेक्षा रखना, उसका संग करना उसी तरह से, प्रीति से, अपेक्षा से, तो ये हो जाएगा कुसंग। और जो आत्मा में जो पदार्थ नहीं है, हमारे आत्मा से अन्य है, ऐसे जो सांसारिक पदार्थ हैं, इसका रुचि से प्रीति से संग करना असत्संग है। और जो आत्मा में आने के लिए अनुकूल निमित्त है इसका बाहर में संग करना वो सत्संग है। तो ज्ञानी का संग मिले वो तो परम सत्संग है, ज्ञानी नहीं होवे और मुमुक्षु जो मोक्षार्थी हो, मुमुक्षु में भी मोक्षार्थी हो, नामधारी तो मुमुक्षु बहुत होते हैं, जैसे जैन नामधारी है वैसे मुमुक्षु भी नामधारी होते हैं, ऐसा नहीं, जो मोक्षार्थी है उसका संग करना, क्योंकि एक ध्येय के अनुसरण करने वाले होते हैं, तो एक ध्येय वाले के साथ चलना, संग करना, इतना विवेक वहां भी रखना है बस। तो ये सत्संग में रहना ऐसा मुनि दशा तक ये बात का उपदेश है। ज्ञानी भी सत्संग में रहना चाहते हैं, श्रीमद जी ने तो बहुत लिखा है अपने आप को सत्संग में रहने के लिए दूसरे मुमुक्षुओं को, लेकिन सुगानी जी का विचार करें, वो भी सोनगढ़ आने के लिए तड़पते थे, बाह्य परिस्थिति अनुकूल नहीं थी, तो सत्संग का वियोग रहता था गुरुदेव का, तो आँख में से आंसू निकल जाते थे कि कैसे हालत हो गई, कैसा हमने अपराध किया है पूर्व में भूतकाल में, कि चाहते हुए भी गुरुदेव का संयोग योग नहीं मिलता है। तो ऐसे दृष्टि के उनके पावर तो बहुत था, दृश्य प्रकाश पढ़ते ये तो समझ सकते हैं कि इनका दृष्टि का जोर तो बहुत था, वो दृष्टि तो अपना आत्मा सिवाय दूसरे को स्वीकार करती नहीं, फिर भी उपयोग तो इनका भी बार जाता है, तो वहां उनको सत्संग की भावना उत्पन्न होती है, ज्ञानियों को भी होती है, तो मुमुक्षुओं को तो होनी ही चाहिए, ऐसी बात है। और संसार में सब चीज आसानी से उपलब्ध होती है, एक सत्संग की उपलब्धि उतनी आसान नहीं है। कभी पुण्य योग से मिल भी जाता है, लेकिन जो जीव सत्संग के लिए आतुर नहीं होते उनको ये सा योग अयोग हो जाता है, यानी विफल हो जाता है, सफल नहीं होता। और जो सत्संग चाहते हैं उसको सत्संग मिलता है तो उसको काफी मात्रा में कुछ न कुछ उसका फायदा होता है, ऐसी बात है। आ जाता है ना, इसलिए उनको भी सत्संग में रहने की आज्ञा है। और एक जमाना ऐसा था कि एक मुनि संघ होवे, मुनि का संघ होता है और उसका जो आचार्य होता है उसमें, उसमें कोई दूसरा मुनि आ जावे और आचार्य महाराज को वो प्रार्थना करे कि महाराज हमको आपका संघ में रहना है क्योंकि हमें सत्संग चाहिए, तो तीन दिन तक उनको प्रोबेशन पीरियड में रखते हैं। क्या तीन दिन तक इसका परिचय इस प्रकार से करते हैं कि उसका संघ से कोई हमारे हमारे संघ में मुनि को नुकसान नहीं हो जाए परीक्षा काल जिसको कहते हैं, क्योंकि हर आदमी की प्रकृति तो एक सी होती नहीं, कुटुंब में भी प्रकृति एक सी नहीं होती तो गड़बड़ होती है कि नहीं होती है, चाहे भाई भाई हो, पति पत्नी हो, बाप बेटा हो, कुछ भी होता है, प्रकृति का मेल नहीं खाता है तो क्या होता है। तो तीन दिन तक उनको रखते हैं ऐसे कि देखिए हम आपको इजाजत नहीं देते, आप ठहरिए इधर, परिचय करिए, आपका भी परिचय होगा, आप भी दूसरों का परिचय करें, अगर ये बराबर मालूम पड़ेगा कि ये भावलिंग है, बराबर आत्महित के लिए ही हमारे संघ में आना चाहता है, तो उनको संघ में साथ में रहने की इजाजत मिलती है, वरना वो नहीं देते। इतना मैंने बहुत गंभीरता से किसका संग करना किसका संग नहीं करना उस विषय में बहुत गंभीरता से आचार्य सोचते हैं। हमें तो सोचना ही चाहिए, क्योंकि वो तो ताकत वाले हैं, उनके पास तो शुद्धि की पूंजी है, फिर भी वो उतनी गंभीरता से इस बात को लेते हैं। तो ये संघ का विषय है, ये बहुत गंभीरता से सोचने का विषय रहता है। कोई भी सुनाने वाला मिले हम सुनने को बैठ जावे, ऐसा नहीं होना चाहिए क्या, कि चलो समय सार तो सुनाता है ना, अपने सुनने में क्या बाधा है, ऐसा नहीं चले। हमारे एक शिविर में प्रश्न चला था, किसी ने प्रश्न किया कि हमें तो समय सार सुनना है, सुनाने वाला कोई भी हो हमें क्या आपत्ति। सब प्रश्न निकाला, चर्चा चलती थी, चर्चा में ये प्रश्न आया सामने कि हमको तो समय सार सुनना है, कोई भी समय सार पढ़ता है सुनाता है, हम तो सुनने को बैठते हैं, सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए। तो हमने प्रश्न किया, प्रश्न के सामने हमने उत्तर रूप में प्रश्न दिया कि किसी ने एक दारू की प्याली में दारू पिया, फिर ये प्याली छोड़ दी ऐसे के वैसे, साफ दी, धोई नहीं, साफ नहीं किया, तो दारू भी सूख जाती है, वो तो अल्कोहल है, वेपोराइज हो जाता है, फिर इसमें गंगा जल पीना कि नहीं पीना। हमने प्रश्न किया क्या किया, हमें गंगा जल पीना है, हमें तो दारू नहीं पीना है, लेकिन वो दारू वाली प्याली में हम गंगा जल पिए कि नहीं पिए। उन्होंने बोला कि नहीं पीना है, बस बात खत्म हो गई। ये सी बात है, ये ठीक है, परीक्षा करना, उसमें कोई सवाल नहीं, परीक्षा करने वाले नहीं फंसेगा। जिसकी स्वतंत्र विचारधारा है, तो स्वतंत्र रूप से जो विचार कर सकते हैं, योग्यता क्या है, योग्यता क्या है, कौन सी बात योग्य है, कौन सी बात यथार्थ है, कौन सी यथार्थ है, उसको तो कोई फंसने का सवाल नहीं रहता। तो वो तो क्या करेगा, कि उसको यथार्थ नहीं लगे तो संग छोड़ देगा, और यथार्थ लगेगा तो संग में रहेगा। तो ये तो ठीक ही है, नए परिचय में तो परीक्षा करके ही आगे बढ़ना होता है, बिना परीक्षा करके आगे बढ़ना नहीं होता है। होनी चाहिए उतनी तैयारी, अगर हम नहीं करेंगे तो हम हमारा हित कैसे करेंगे। हम बाजार में हमें 150,000 रुपये का सोने का जेवर लेना है, और बाजार में तो 150 दुकान लगी हुई है जेवर की, ऐसा हम नहीं करते कि किसी की दुकान में घुस जावे। हम पहले विचार करते हैं कि ये 100-200 जवेरी बाजार के जो दुकान है, जोहरी जो बैठते हैं सोने के व्यापारी, किसकी दुकान में जाएंगे, ये पहला विचार करेंगे कि नहीं, कि कहाँ से लेना है, ये कीमती चीज है, कोई फुटपाथ पर से तो लेंगे नहीं, फुटपाथ पर भी बेचने वाले खड़े रहते हैं, होते हैं कि नहीं होते, साहब ये चेन है कैसा अच्छा दिखता है, 10 रुपया में दे दूंगा, सोने का हो तो उसकी घड़ाई का 500 रुपया लगेगा बनाने में, कि मजदूरी 500 रुपया लगती है, वो 10 रुपया में वो देता है, कैसे देगा, ले लेते हैं अपन, क्या सस्ती मिलती है इसलिए ले लेवे क्या, वहाँ तो अपना बराबर दिमाग लगाते हैं कौन से व्यापारी प्रमाणिक है, और ये भी समझते हैं कि अगर थोड़ा भाव ज़्यादा भी लगेगा वहाँ क्या लगेगा। भाव ज़्यादा लगे कोई बात नहीं है, लेकिन चीज़ पूरी अच्छी मिलनी चाहिए हमें। आम लेने को जाते हैं कि नहीं, कहीं से भी ले लेते क्या? अपना फ्रूट वाले से लेंगे, वो खट्टी हमको मत देना, 2 रुपया ज़्यादा लेना, लेकिन पूरी चीज़ अच्छी से अच्छी मिलनी चाहिए। क्यों? विश्वास से काम लेते हैं, परिचय है उसका। इसलिए धर्म तो बहुत कीमती चीज है, सोना से, हीरा से, जेवर से ज्यादा कीमती चीज है। उसका संबंध तो संस्कार के हिसाब से अनेक भाव तक चलता है, और सही संस्कार मिल गया तो आनंद भाव का काम हो जाता है। आत्मा का स्वभाव का सही संस्कार डाला गया तो आनंद भाव का काम हो जाता है, निवेड़ा होता है। इतनी कीमती चीज है वो तो, इसलिए बात तो बहुत गंभीर है। बस पहली बात ये कि अपने अपना हित करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। क्या नहीं, ये ध्येय बांधना पड़ता है, ये पूर्णता का लक्ष्य वाली बात इसके लिए है। जब ही क्षमता आती है कि निर्दोषता के प्रति कौन ले जाता है, या दोष करने की बात भी सम्मत होती है या निर्दोषता को सम्मत करता है। अभी घर पे ही हमारे ये प्रश्न चला, कैसे पता चले? कैसे पता चले क्या? जब हमें निर्दोषता चाहिए तो हमारे मतलब के साथ कौन साथ देता है? हमारा मतलब को कौन साथ देता है, हम नहीं पहचान सकते क्या? हर जगह मतलब के विषय में बुद्धि जो है वो सूक्ष्म हो जाती है, पैनी हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? हम बाजार में जाते हैं, किस किस्म किस्म का आदमी मिलता है कि नहीं आता है? हमारे ऑफिस पर कोई जान पहचान वाला आएगा, ऐसा थोड़ी बात है, कोई नया आदमी भी आ जाएगा। लेकिन जब हमारे मतलब में हम पक्के हैं तो कोई भी आवे हमें क्या आपत्ति है? हमको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम हमारे मतलब में बराबर पक्के हैं। वैसे उसमें भी ऐसा ही है कि जब हमें निर्दोष होना है, यही हमारा प्रयोजन है, मतलब मैंने प्रयोजन है, तो हमारा प्रयोजन के लिए कौन सी बात बढ़िया है, कौन सी बात ठीक है? तो पता चल जाता है अपने जी। कैसे? ऐसा है कि ये बात तो रही अपनी गरज की, जिसको जितनी गरज है, जैसे एक फैक्ट्री में एक इंजीनियर है, उसको 2-3 हजार रुपया तनख्वाह मिलती है, लेकिन वो फैक्ट्री की शर्त वो है कि तुमको 8 बजे सुबह आना है। हमारी फैक्ट्री 8 बजे चालू होती है, 8 बजे पर 5 मिनट लेट होने से तुम्हारी सारे दिन की तनख्वाह कट जाएगी। क्या हमारे यहाँ टाइम का पक्का होना, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन है, उसमें जो जुम्मेवार आदमी है उसको तो टाइम पर हाजिर होना ही है। जाएगा कि नहीं जाएगा? आठ बजे नहीं जाना है, हम 15 मिनट आगे आगे आ जाएंगे। क्यों? कि शायद रास्ता में पंचर हो गया कुछ, हम मार्जिन रख के चलेंगे। ट्रेन छूटती है हमारी तो भी हम मार्जिन रख के जाते हैं। क्यों? कि हमारा टिकट का पैसा चला जाता है। तो वहां हमारा लाभ नुकसान का जहां सवाल है, वहां तो हम बराबर सतर्क होकर के चलते हैं, सावधान होकर के चलते हैं। हैं? बस यही तो विचार करना है हमें, यही तो विचार करना है हमें कि यहाँ हमें लाभ नुकसान किस टर्म में हमारे क्या, और इस परिस्थिति में उसको दिखाने वाला कोई मिल जाए तो उसको देखने में आती है ऐसे ही काम होता है। यहां तक उसको पैदा हो जाती है कि ये बात ठीक है, ये सुनने तो शुरू में नहीं बता सकता। शास्त्र की बात तो हर कोई कर सकता है, शास्त्र में मार्ग का विधान अवश्य है लेकिन मर्म ज्ञानियों में बदले नहीं। तो ये मर्म को जो पकड़ लेता है वो कौन पकड़ सकता है? कि जिसको इसकी खोज होती है वो जो वो पकड़ता है तब तो उसको पता चल जाता है कि चीज तो यहां है, इसलिए उनको पता चलता है तो कृष्ण मोक्षता में आता है। उसको ऐसी परिस्थिति में पता चलता है, ऐसे सभी को पता चल जाता है, ऐसी बात नहीं है। ये कोई कहने की बात नहीं है, न सुनने की बात है, न किसी के कहने से स्वीकार करने की बात है। ये अपनी खुद की स्वयं की सूझबूझ का विषय होता है और इसके लिए अपने पास की तैयारी होनी चाहिए। खुद की तैयारी नहीं है तो कहीं भी भटक जाएगा। या तो जो विद्वान होगा उनको मानने का विद्वत्ता के कारण से, या तो ज्ञानी होगा और विद्वान नहीं होगा तो भी स्वीकार नहीं करेगा कि उसको क्या बोलने को आता है, समझा नहीं सकता है, तू क्या समझता होगा, उसको तो समझा नहीं सकता है। उनके लिए तो
रोगी भी डॉक्टर को पहचान लेता है, रोगी को पता चल जाता है डॉक्टर का
नाम, पता चल जाता है। जरूरत नहीं है कि रोगी ने डॉक्टरी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, गंभीर रूप होता है हम क्या करते हैं, 4-6 डॉक्टर को बुला लेते हैं, फिर हम ये कहते हैं कि आप कॉन्फ्रेंस करो। क्या 4-6 डॉक्टर को बुला करके इसकी कॉन्फ्रेंस करवाते हैं लोग, आप चर्चा करेंगे, कौन सा निदान करते हैं आप, कौन सा इलाज बताते हैं। अब मरीज जो है उसको पूछना पड़ता है कि भाई तुमने सुना, वो ऐसा कहता है, वो डॉक्टर ऐसा कहता है, वो डॉक्टर ऐसा कहता है, वो डॉक्टर ऐसा कहता है, उनको क्या लगता है? तो मरीज बताएगा तो वो डॉक्टर सही है, इनकी दवाई इलाज करना है, क्या वो पढ़ा है? जरूरत नहीं है कि डॉक्टर उसने पढ़ी हो, लेकिन अपनी वेदना को कौन डॉक्टर समझ सकता है उस पर से वो पता चला पाए कि उसके पास ज्ञान नहीं है। ऐसे हमारा भी एक भवरोग है और क्रॉनिक डिजीज है, क्या कहता है, बहुत पुराना हो गया है, क्रॉनिक है। धर्म की बातें करने वाले तो बहुत होते हैं और सब यही कहेंगे कि मोक्ष हम मोक्ष में ले जाने वाले हैं, हम मोक्ष मार्ग बताते हैं। जो सही दर्दी होता है, जिसको दर्द का पूरा दुख है, पीड़ा वेदना है, उस वेदना को समझाने वाला कौन ठीक है, उसका पता निकाल सकता है।
मतलब नहीं नहीं खाने को पहचान सकता है,
नहीं गुणों को भी पहचान सकता है, उत्कृष्ट
गुणों को वो भी ज्ञानी होता है ना, तो उसमें मोक्ष को भी थोड़ा ज्ञानी तो होगा ना।
सही मोक्ष जो होता है जिसको मोक्ष की साधना होती है, जो मोक्षार्थी होता है और सिवा मोक्षार्थी किसको कोई प्रयोजन नहीं है उसको पहचान सकता है। श्रीमद जी ने 254 नंबर के का नेत्र महात्मा को पहचान लेता है, वो पहचानता है, लेकिन नेत्र मुमुक्षु का चाहिए, दूसरा नेत्र नहीं चाहिए। ये बात
मैं आपको थोड़ी जवाब की गलती भी दिखे गई थी, जैसा कि उद्देश्य का आठ बात करने की बात सिद्धांत भी गलत हो जाता है,
जिस भूमिका का जो व्यवहार है उस भूमिका का व्यवहार जिसको छूट जाता है उसको वहां परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। मुनि की बात क्या, तो मुनि को 28 नंबर गुण में बांध छोड़ दी है, क्या 28 नंबर गुण में कोई बांध छोड़ नहीं, तो एक भी मूल गुण छूटता है तो मुनि पद नहीं रहता, भावी नहीं ब्रह्म जी नहीं रहता। 28 नंबर गुण बराबर है तो द्रविणी के बराबर है, फिर भावनी के पास तो परमार्थ के विषय में करना पड़ता है, प्रवास के विषय में तकलीफ नहीं है फिर, लेकिन व्यवहार बराबर है तो परमार्थ भी बराबर है तो बात नहीं है, फिर परमार्थ के लिए दूसरी परीक्षा करनी पड़ती है। तो पहला स्टेज में जो पास है उसके दूसरी परीक्षा करनी है, लेकिन पहले में जो ना पास है तो दूसरे तरह जी की परीक्षा करने का सवाल ही कहां पैदा होता है। ऐसे मुमुक्ष नहीं, मुमुक्ष जो है वो देव गुरु शास्त्र और सत्पुरुष ये चार जगह में कहीं भी विरोध में जाता है तो मुमुक्ष का छोड़ दिए, फिर उसको समझा ज्ञान है कि नहीं तो तलाश करने की कोई जरूरत नहीं, उसका अभिप्राय देना या तो देव के विषय में हो या तो शास्त्र के विषय में हो या तो सत्पुरुष के विषय में।
ये तो अपनी अर्थी से लेते हैं, ये तो अपनी अर्थी से लिए, लेकिन नास्ती से भी दे सकते हैं कि जो उदय को छूटता है
स्थापना और उठापना एक भी जगह पूर्व जैसे हम 10 दफे तो जी मंदिर में जाते हैं और एक दफे अम्बा जी के मंदिर में भी जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो दस 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 दफे तो गए वो मतलब 10 गुना तो ज्यादा है नहीं, 10 गुना ज्यादा नहीं है क्या, तो बात खत्म हो, उसको 1% भी मिलने वाला नहीं, 90% तो नहीं है ज्यादा, 1% भी उसको नहीं मिल सकता।
इतना हार्ड क्यों रखे हैं, इतना हार्ड
मालूम नहीं है, वस्तु का स्वरूप वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है।
अंबाजी तो मिथ्यात्व दे हो गए, अंबाजी की लेकिन जो जीव प्रतिमा है श्वेतांबर वो तो जीव प्रतिमा है ना, फिर वहां उसका क्या,
उसका नाम दे दिया जीव प्रतिमा, लेकिन काम तो नहीं है जिनका, जिनदेव का और काम नहीं है, श्रृंगार करना कि वितराग देव का तो काम नहीं है, नाम दे देने से क्या फायदा, ये तो हनुमान जी को भी महावीर कहते हैं और अपने महावीर भगवान अंतिम दर्शन को भी महावीर कहते, क्या एक से है क्या है, ये लोगों ने निकाला है पितांबर ने घंटा कर दो महावीर, तो ये सुनने का कोई और भी महावीर हो गया होगा, और इसका मुंह भी ऐसा रखा है सुंदर जैसा, हाथ में सिर काम था और लंगोट पहनाते हैं और मुंह भी बंदर जैसे बनाते बहुत भगवान मोहरी से ज्यादा इनकी मान लेता हूँ मोहरी है ना मोहरी उत्तर गुजरात में बहुत सारा इतने लोग जाते हैं इतने लोग जाते हैं खुले को मानते नाम में ऐसे कोई भागे हो जाता है इसलिए विवेक को अपने को करना हमारे पिताजी दारू नहीं पीते थे क्या हमारे पिताजी दारू नहीं पीते थे लेकिन किसी ने फोटो को लगाया और हाथ में बोतल दे दी फोटो ने हमें क्या लगेगा बहुत बुरा लगेगा ये क्या कर दिया हमारा पिताजी के फोटो और उसके हाथ में दारू की बोतल तुमने पेंट करवा दिया है क्या बात कितने नाराज हो जाएंगे हम लोग बुरा लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा ये तो थोड़ी चर्चा करी थी ना तो हमें बुरा लगना चाहिए हमारे भगवान को तो ये क्या करते हो जो विराट है निर्दोष है परिपूर्ण पवित्र है उनको तुम रागी कैसे बनाते हो जैसे रागी हो कैसे उसको दिखाते हो विराट को रागी दिखाते हो रागी के लिबास अपने को दुख होता है आज के दिन की संख्या बहुत बढ़ गई तो क्या है सहन करना पड़ता है या दूर रहना पड़ता है कुलकुंडाचार्य ने बहुत विरोध उठाया था कुलकुंडाचार्य संक्रमण काल में हुए उसके संबंध निकला बहुत विरोध किया अष्ट पाहुक सारा उसका देखा है एक ग्रंथ लिखा कुलकुंडाचार्य क्या विरोध में वृत्तांतर के विरोध में आचार्य होते हुए ही लोग क्षण क्षण में तो चले जाते हैं आत्मा में पर एक क्षण में निकल बाहर आकर उसको उसमें जन्म लिख दिया कि ये क्या हो रहा है उस वक्त तो प्रतिमा नहीं बनी थी क्या कुंडाचार्य के भक्त ये चेतावन मंदिर भी नहीं थे ये तो फिर 500-700 साल बाद मंदिर हुए पहले तो उनको शास्त्र बने फिर मंदिर हुए तो उस वक्त तो खाली उन्होंने उतना ही फेरफार किया था कि वो थोड़ा जो झाड़ के वो पेड़ की छाल होती है उनको वस्त्र बना करके फिर गांव में भिक्षा ली गुजार गए थे नग्न रूप में नहीं जाते उतना ही दोष किया था तो बहुत बड़ा मंड को कारा है सुनना चाहते कि वस्त्र का तो एक धागा भी रखेगा और मुझे मानेगा और मनाएगा निगोल में देखे निगोल में चला जाएगा
दिगंबर मंदिर में भी प्रतिमा को कहेंगे दर्शन का टीका वगैरह लगाते हैं
हाँ वो भी ठीक नहीं है
वो भी ठीक नहीं है
वहाँ कुछ नहीं लगाना है वो चंदन भी लगाते हैं फूल भी लगाते हैं भगवान को न शीतलता की जरूरत है न सुगंध की ये भी राग का विषय है सुगंध भी राग का विषय है शीतलता भी राग का विषय है एक स्पर्शेंद्रिय का है एक ज्ञानेन्द्रिय का है
ये बात हो गई थी वहां सोलापुर में दिगंबर मंदिर में कोई पूजा कोई आया होगा और चंदन का टीका लगा दिया तो वहां जो मन महाराज ने भी था वो आया तो मूर्ति को वंदन नहीं किया मूर्ति हो गई वो नहीं हो गई
कोई भी विकृति जीव प्रतिमा के पर नहीं होनी चाहिए विकृत नहीं करता जैसा मित्रा जीव देव का स्वरूप है वैसे के वैसे ठीक इनकी प्रतिमा होनी चाहिए इतनी बात है
तो दिगंबर लोगों में भी फर्क हो रहा हूँ, कम हो तो कई जगह पर
स्वरूप नहीं समझते, लोग सुनना चलते हैं तो फिर कल्पना तो हो ही जाएगी कहीं लोग सुनना में कल्पना विकृति कर लेंगे। ठीक, कोई भी सचेत पदार्थ का प्रयोग नहीं,
आज रात्रे